ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवाड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की, भाजपा ने किया विरोध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉब्स एट योर डोरस्टेप नामक रिपोर्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। पार्टी के अनुसार ये अभियान पूरे शहर में इस महीने की 25 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि अभियान के जरिए पार्टी पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों से चर्चा और संवाद करेगी तथा दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देगी।
आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं।
इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार ने अपने राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली में केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। श्री सचदेवा ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर दिल्लीवासी का अधिकार है और भाजपा सरकार में आने के बाद शहर के लोगों को उनका हक दिलाएगी।
दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं करते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे।
भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि बैठक के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई।
दिल्ली के जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसके बारे में भी बातें हुई और जैसे उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो भाजपा को किस प्रकार से और दिल्ली में मजबूत करना है और आने वाले चुनाव में मेहनत करके पूरे चुनाव को लड़ना है। 11 में से 6 नाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी काडर से नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस प्रकार से लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रही है कि क्या 10 साल में पूरे आम आदमी पार्टी में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो वहां से चुनाव लड़ सके।
इस बैठक में दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि इन नियुक्तियों से सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। श्री सक्सेना ने बताया कि बीते 2 वर्षों में दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगभग 22,000 लोगों को स्थायी नौकरियां दी गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि ये युवा प्रतिभाएं समाज में बंधनों को तोड़ेंगी और लैंगिक भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने मुख्य सचिव को वायु गुणवत्ता में हो रहे सुधार को बनाए रखने के लिए ग्रैप प्रतिबंधों की क्रियान्वयन की निगरानी और सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय रखने के लिए कहा। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में श्री रॉय ने कहा कि सभी विभाग ग्रैप निर्देशों के पालन के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 405 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के वजीरपुर स्टेशन पर AQI 445, अलीपुर में 434, विवेक विहार में 432, पंजाबी बाग में 424, ओखला में 410 और पटपड़गंज में AQI 408 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों से कहा है कि वे अपना कार्यकाल पूरा कर चुके वाहनों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाएं और इनकी जानकारी एक नोडल एजेंसी के माध्यम से आयोग को दें। आयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत सख्त कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
कल 23 नवंबर 2024
सुबह 9 बजे से आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
लोक निर्णय।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में जॉब्स एट योर डोरस्टेप नामक रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने 6 राज्यों की विस्तृत रिपोर्ट के लिए विश्व बैंक की टीम की सराहना की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विश्व बैंक की टीम एक अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी करने के लिए काम करे। श्री प्रधान ने कहा कि इस तरह रिपोर्ट से हितधारकों को नई वास्तुकला बनाने और आबादी के सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
भारत जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जब हम विश्व की एक रोबस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, उस समय में हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मानव संबल के ऊपर निरंतर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। और ये जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश को एक ग्लोबल स्किल हब बनाने की कल्पना रखा है। न केवल हम अपना ही अर्थनीति को मजबूत करेंगे, भारत दुनिया की ग्रोथ की ड्राइवर बनने वाला नेतृत्व करने वाला।
इस अवसर पर डॉक्टर मांडवे ने कहा कि पिछले बजट में क्षेत्र विशिष्ट कौशल का उपयोग करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने कहा कि अकादमिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करना आवश्यक है।
जिस देश में इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, 8% के रेट से जिस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, उसका मतलब यह हुआ कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। जब एक साथ में ग्रो करेंगे तब आपकी इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी। जिसकी इकोनॉमी ग्रो करती है वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्वाभाविक है।
दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2022 और 23 के लिए मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों के क्षेत्र में युवा कलाकारों को सम्मानित करता है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एक विजेता यूसुफ खान मेवाती ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने अनुभव के बारे में बात की।
हमारा एक फोक वाद्य यंत्र है भपंग, जिसके लिए मुझे वर्ष 2023 का उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है। आज बड़ी खुशी की बात है, मेरे घर में 3-3 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं। मेरे दादाजी को भी नेशनल अवार्ड मिला, मेरे पिताजी को भी, और आज सबके आशीर्वाद से मुझे भी 2023 का उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब युवा पुरस्कार मिला है और बहुत खुशी हो रही है।
एक अन्य पुरस्कार विजेता पद्मा डोलकर ने लद्दाख की पहली युवा कलाकार बनने पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है।
मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि लद्दाख से मैं पहली वो युवा हूँ जिसको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, और मुझे लगता है कि इस अवार्ड के बाद बहुत सारे जितने भी यूथ्स हैं सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे फोक कल्चर को प्रिजर्व करने में। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और संगीत नाटक अकेडमी को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि मुझे ये पुरस्कार दिया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने आज दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री शाह ने कहा कि दिल्लीवासियों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की टीम से मुलाकात की और सच सामने लाने के उनके साहस के लिए बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये फिल्म भ्रामक तथ्यों को उजागर करती है और उस सच को सामने लाती है जिसे राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए लंबे समय तक दबाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के परिणाम
कल 23 नवंबर सुबह 9 बजे से।
मतगणना की पल पल की खबर,
हर सीट की सटीक जानकारी,
संवाददाताओं से ताजा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
लोक निर्णय।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन छात्राओं ने वर्ष 2024 में CBSE बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। विवरण, पात्रता शर्तें और ऑनलाइन आवेदन पत्र CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज आगंतुकों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आए।
43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश भर से आगंतुकों का आना लगा हुआ है। आज खासकर सूखे मेवे, जूते, कपड़े, सजावटी सामान, रसोई का सामान, मिट्टी से निर्मित बर्तन, हस्तशिल्प उत्पाद और खिलौनों के स्टॉल पर लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे थे। इस वर्ष मेले का फोकस स्टेट झारखंड है और झारखंड के स्टॉल पर भी लोगों की भारी भीड़ थी। मेले में इस साल 3000 से अधिक देशी विदेशी प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इनमें भारत के लगभग 3 राज्यों के अलावा चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के साथ साथ अन्य देश भी भाग ले रहे हैं। लोगों के खान पान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। 27 तारीख तक चलने वाले इस मेले के टिकट ऑनलाइन ITPO की आधिकारिक वेबसाइट और DMRC ऐप से खरीदे जा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन टिकट दिल्ली मेट्रो के 55 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक मेले का आनंद उठा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश और उड़ीसा भागीदार राज्य होगा। दिल्ली में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की, भाजपा ने किया विरोध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉब्स एट योर डोर स्टॉप नामक रिपोर्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।